राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे सिंथल में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री भगवान की तरफ से मनुष्य को बहुत ज्यादा अधिकार मिला है विचार करने से मालूम होता है कि कोई भगवान के पक्षपात है। मनुष्य को बहुत ज्यादा अधिकार दिया है जैसे कोई पक्षपात करे ना ऐसा मालूम होता है। दुनिया मात्र का विश्व मात्र का संसार मात्र का उद्धार मनुष्य कर सकता है। अपने उसमें भी इतनी कच्ची खा रहे इतना गलती कर रहे इतना निराश हो रहे हैं अपने उद्धार से भी निराश हो रहे हैं और अधिकार इतना है बहुत मनुष्य अधिकार है। इनमें दो बातें मन में आई आज क्या किससे उद्धार हो कैसे हो खास दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो सबका आधार है सबका आश्रय है सबका मूल है सब जो प्राण है सबका जो सार है वो क्या है परमात्मा है। यथा तरोर मूल निषेचन न तृत्यंत स्कंद भुजो पर शाखा जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष का तना और शाखाएं छोटी शाखाएं छोटी छोटी टहनिया पत्ते फूल और फल सब में तृप्ति पहुंचती है वृक्ष के जड़ में जल डालने से। और प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी और हम प्राणी प्राणियों के प्राण या भोजन दिया जाए खुदा पिपासा प्राण से प्राण का धर्म है यहाँ अन्न दिया जाए तो सब शरीर में शांति ज्ञान पहुंचता है। ऐसे सबके मूल परमात्मा है उसका भजन किया जाए तो उसमें तल्लीन हो जाए उसमें इस केवल तो दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं होगा। हम उद्योग से करें चेष्टा करें परमात्मा बहुत कुछ पैसा लगा कर करें उससे उतना नहीं होगा। तो एक बात तो ये है सब दुनिया का हित करे सबका कल्याण करे भाव रहे सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संतु भया मिंद्रा मया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबके सब नीरू हो जाए सबके मंगल ही मंगलान्वी होना होता है किसी व्यक्ति किंचित बात भी कष्ट न हो ये भाव है। ऐसा हमारा भाव हो तो बड़ा भारी लाभ होगा। इस भाव की कसौटी है कि हमारे में राग द्वेष न हो। एक राग द्वेष एक में राग होता है और द्वेष होता है तो वो न हो तो इसकी सिद्धि हो जाती है। राग द्वेष होते विवाह की सिद्धि नहीं होती। तो राग द्वेष की पहचान क्या है अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसा अयम निज, ये तो हमारा है और ये दूजा है। ये जो करना है ना लुक चेत सा, बहुत तुच्छ अंतकरण की बात है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरित वालों के लिए तो मात्र संसार अपना संसार अपना कुटुम्ब है। ये भाव, इस भाव की परीक्षा क्या हो, जैसे अभी हम सुनते हैं कि बंबई में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, ऐसे कहीं लड़ाई होती है उसमें बात हम सुनते हैं, वे मुसलमान मरे तो चित्त में अच्छा लगता है, अनुकूलता लगता है, अनुकूल भाव बात होता है, प्रसन्नता होती है। और हिंदू ज्यादा मर गए तो हमारे अंतःकरण में असर ठीक नहीं होता, मन दुख होता है। ये दो असर होते हैं, ये इसकी पहचान है कि हमारे राग द्वेष है कि नहीं। अगर ये दो असर होते हैं तो हमारे राग द्वेष मिटा नहीं है, राग द्वेष है। और ये राग द्वेष जब तक रहेंगे तब तक न ज्ञान की सिद्धि है, न भक्ति की सिद्धि है, न योग की सिद्धि है। योगास्त्रयो मया प्रभुत्वा घृणांस्तेयो विदिश्यया, एकादश स्कंध में तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। खूब अच्छा विवेचन किया है एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में। तो ये जब तक राग द्वेष है, हर घर शोक है, ठीक बेठीक है, अनुकूल का प्रतिकूलता उसका अपन पर असर पड़ता है, तो अभी तक समता की प्राप्ति नहीं हुई है। वो समता प्राप्त होने पर सब पर विजय हो जाती है। गीता में लिखा है यही उत्तेजित सर्व ये शांग साम्य स्थितम बना, ये शांग बना साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, समता आ गई है, तो यही जीता, यहाँ ही संसार को जीत लिया। जीती अवस्था में वे जीवन मुक्त हो गए, सब संसार पर विजय हो गई। क्यों हो गई? निर्दोष होंगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो अंतर्गत निर्दोष और सम होना चाहिए। निर्दोष ब्रह्म जो निर्दोष, उसकी प्राप्ति का परिचय क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, हम कैसे समझे कि निर्दोष हम ब्रह्म को प्राप्त हो गए? तो जैसे अपने स्वर्गाश्रम में रहते हैं, बर्दी से सत्संग होता था, तो वहाँ पूर्व की तरफ भी पहाड़ है और पश्चिम की तरफ भी पहाड़ है, बीच में गंगा जी चलती है, तो सूर्य दिखता नहीं, पहाड़ आ रहा जाने से सूर्य दिखता नहीं, तो सूर्य उदय होने का क्या पता लगे कि सामने जो बड़ा पहाड़ है उस पहाड़ पर गांव आ जाए, तावड़ा आ जाए वहां, तो हम कहते सूर्योदय हो गया। क्या आपने देखा है कि दिखता नहीं, तो कैसे देखा कि वो जो पहाड़ पर गांव आया है, सूर्योदय ने वहां कैसे आता, वहां आता सूर्योदय हो गया। जैसे सूर्योदय की पहचान अगाड़ी का बड़ा पहाड़ है, उस पर घाम आ जाने से परीक्षा होती है, ऐसे ही तत्व प्राप्ति की परीक्षा होती है कि उसके अंतःकरण पर समता आ जाए। परमात्मा तो सम है ही, ब्रह्म के लक्षणों में लिखा निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है, दो शब्द, एक निर्दोष है एक सम है, उसमें कोई दोष नहीं है और समता है। तो उस ब्रह्म की प्राप्ति होने पर मन पर निर्दोष तर समता आनी चाहिए, मन में दोष नहीं रहना चाहिए और समावस्था होनी चाहिए। तो अंतर्गत में निर्दोष और सम हो तो समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तेल विपस्तर्वो ये साग साम्य स्थितम मन, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हुआ है, तो उन लोगों ने संसार को जीत लिया। कहते क्यों? कि निर्दोष में समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो उसी अंतकरण में निर्दोषता और समता आ जानी चाहिए। तस्मात ब्रह्म की स्थिता, इससे सिद्ध होते हुए ब्रह्म में सिद्ध है, और अंतकरण पर वो असर नहीं हुआ तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्म प्राप्त होने पर अंतकरण निर्दोष सम हो जाएगा। तो एक तो ये बात है कि परमात्मा में हमारी स्थिति होगी तो संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा। तो स्थिति नहीं हो तो क्या करें? उसी का जप करें, उसी का कीर्तन करें, उसी का चिंतन करें, उसी में तल्लीन हो, वही हमारा है। एक ही बात, मेरे सुखदर गोपाल, दूसरो न कोई, एक परमात्मा तत्व है। मेरे मन में आई थी पहली बात कि भाई मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठता जल्दी और अचूक क्या, जिससे उसकी प्राप्ति हो पाए, तो उसकी प्राप्ति के लिए कम से कम मनुष्य की ऐसी एक स्थिति चाहिए कि इस जगह हम सब उस त्याग कर सकते हैं। जैसे गुरु धर्म है, भाई हमारे गुरु के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। अथवा हमारे कोई इष्ट है, उस इष्ट के लिए, परमात्मा के लिए प्राण भी छोड़ दें, हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं। ऐसी कम से कम एक जगह तो मनुष्य की चाहिए। तो उनका काम ठीक बनेगा, बढ़िया सब जगह ही हो जाए कि सर्वे हो सुखी, सबके सुखी हो, सब ऐसे हो जाए, परंतु तो कम से कम एक जगह ऐसी हो, अपने संप्रदाय के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट मित्र के लिए, अपने परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, किसी के लिए, भगवान नाम के लिए, भगवत स्वरूप के लिए, भगवत धाम के लिए, उसके लिए ऐसा हो कि जिसमें हम सब सोच सकते हैं, प्राण भी त्याग कर सकते हैं। ऐसे जीवन में एक जगह तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो आदमी कैसे चलेगा, दृढ़ता से कैसे चलेगा। ऐसी बात है, तो ऐसा विचार होने पर वो परमात्मा जो सम है उसकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारी सब तरह से वृत्ति हो जाएगी तो प्राप्ति हो जाएगी। गीता ने कहा है, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो कोई पुरुष असमूढ़ पुरुष है, पुरुषोत्तम को जानता है, सो सर्ववित, उसका नाम सर्ववित है। पहचान भजति माम सर्वभावेन, सर्वभाव से मेरा भजन करता है, शरीर से, मन से, वाणी से, अंतकरण से, इंद्रियों से, पदार्थों से, कुटुंबियों से, सबसे मेरा भजन करता है सर्वभाव से। तो सर्वभाव से भगवान को भजन करेगा वो जो जिसके इष्ट होगा। जैसे रुपयों को मुख्य मानने वाले, रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी, इसको कर देंगे, आलस छोड़ देंगे, नींद छोड़ देंगे, मुसाफिर कर लेंगे, गाड़ी में भीड़ है नहीं जा सकते, खड़े खड़े रात भर जाएंगे तो भी समझेंगे बहुत ठीक हुआ, आ गए आज, ऐसा कर सकते धन के लिए। ये धनार्थम धन के लिए जितने कष्ट सहते हैं, वो ऐसे कष्ट अगर परमात्मा के लिए सहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, पर धन तो जड़ है, फिर वो क्या देखे। तो ऐसे एक उद्देश्य रख ले तो उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उस प्राप्ति के लिए जिसकी प्राप्ति अभी मैंने कहा, तो एक उद्देश्य, एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, ऐसे एक में तत्पर होने से उसकी प्राप्ति हो जाती, फिर संसार मात्र पर विजय होगी उसकी। सर्वित भजन जी मान, वो सर्वित है। और दूसरे श्लोक में जो कहा आपको, ये सार यही तेरे से 10 साल का संसार को जीत गए। संसार मारती ऊपर उनकी विजय हो गई, वो किसी से हारा नहीं, सब पर जीत गए। एक बात तो ये, इससे उस परमात्मा में स्थिति होती है, ये उसका साधन है। दूसरी बात एक ये है, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम आदमियों का है, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ उस तरफ लक्ष्य कम है। वो लक्ष्य लेंगे हम ठीक समझे तो उसकी प्राप्ति होते। हमारी दृष्टि में कोई बुरा न हो, मानो किसी को हम बुरा न समझे, किसी की बुराई न करे, किसी की बुराई न सुने, न किसी की बुराई देखे। अगर ये व्रत धारण कर लें, नियम कर लें कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी की बुराई देखेंगे नहीं, किसी की बुराई कहेंगे नहीं, करेंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं, ऐसे बुराई से सर्वथा निवृत्त हो जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से त्रिलोकी को जल देने का मातम हो जाता है, क्योंकि बरसात जितनी होती है उस सूर्य से ही होती है। सूर्य भगवान किरणों से संपूर्ण रस को खींच लेते हैं और समुद्र से नदियों से सबसे जल खींच लेते हैं, वो जल करके अच्छा करके फिर प्रसाद देते हैं। तो इतना बड़ा भारी यज्ञ है जल का, सूर्य भगवान के द्वारा त्रिलोकी को जल मिलता है, भूमंडल मात्र जितने सब जल मिलता है, तो सबको जल पहुंचा तो हम क्या करें कि सूर्य भगवान को सुबह स्नान करके शुद्ध होकर तांबे का कलश लेकर के उस जल सी साफ करके शुद्ध जल भर करके कुमकुम अथवा लाल पुष्प डाल करके और सूर्य भगवान की यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपत के अनुकंपा भक्त्या गृहाणार्यम नमोस्तुते ऐसे श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, ऐसे 3 अंजलि सूर्य को देने, श्री सूर्याय नमः। तो त्रिलोकी को जल पाने का मातम होता है उसको, और बलि विश्व कर दिया जाए, रसोई बनकर तैयार हो जाए तो बलि विश्व देव होता है, उसमें आहुति दी जाती है। तो यंत्र में आहुति दी जाती है, तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में वो पन्ना छपा हुआ है, और वो पन्ना मिलता भी यहाँ है कि नहीं पता नहीं, उस पाने पर इस तरह से कोष्ठक बना करके और भोजन में उसमें आहुति दी जाए, अग्नि में आहुति दी जाए, उसमें नमक न हो, चीनी घी हो, नमक न हो, अग्नि में आहुति दी जाए, ऐसे वो आहुतियां दी जाती है, तो उससे बलि विश्व देव होता है। दुनिया मात्र के भोजन करने का माध्यम होता है उसमें, इतने ये दुनिया मात्र का हो। ये हमारी अनाधिकार से चलती थी बात, तो आज भी, अब तो मैं नहीं कहता भाई, बचपन की बात मेरे देखी हुई है, आजकल घरों में मेरे जाने का काम नहीं पड़ता, रसोई पड़ता है, माता बनाती है, तो उस समय जाने का देखने का काम नहीं पड़ता। तो बताए कैसे बनाती थी, एक रसोई बनाती तो सबसे पहले एक छोटा सा कुत्तेर बाटी, कुत्तेर बाटी बनाओ, कुत्तेर बाटी बनावे ही, वो तो बनावे ही थोड़े से कर दियो, ये नियम ही साग दो रसोई बनाओ पहले कुत्तेर बाटी बना। ऐसे एक अंधकार की रोटी होती थी, वो रोटी एक बनाने को एक बनाते थे, वो दिखा देते थे, और सब रसोई तैयार हो जाए, बालक भी भोजन मांगे तो क्या करते कि चावल है या तो फलका है, उसमें नमक नहीं डाला ऐसा, उसमें चीनी और घी डालकर और तुलसी विष्णु जी माधो आते, तो बलि विष्णु देव का जो काम था नहीं, वो इतना साक रह गया। ये सब में चलता था, आजकल पता नहीं कैसे चलता है, बचपन में और देखी हुई ऐसा भोजन करते, पहले कुत्ते का बाटिया बनता हो, और जब भोजन परोसना करना है तो पहले विष्णु जी महावीर भगवान मानो अग्नि देव में आहुति देते थे, इसके बाद भोजन काम में लो। तो ये बल वेश छोटा रूप बहुत छोटा होता होता इतना हो गया, वो भी होगा अभी। ये करना ही तो माता बहन वो करना चाहिए रसोई में, रसोई पर जाके इसमें घी और चीनी और चावल दे दो, और नमक नहीं हो तो वो फलका छोड़ो, वो दे करके अपना तो इतना भी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उस करने से त्रिलोकी को भोजन देने का माध्यम है, तो भोजन देने का माध्यम है और वो जल पिलाने का माध्यम है सूर्य अग्नि देने से, ऐसे दुनिया मात्र को अन्न देने का माध्यम है। तो ये अपना शुरू कर देना चाहिए घर में। तो ये आज मैं दृष्टांत से कह रहा था, ये मैंने कोई मेरा खुद विषय नहीं है, दृष्टांत में जैसे इनको देने से पुण्य होता है। तो दो बात है, एक तो हमारे करने की बात होती है, एक हमारे त्यागने की बात होती है। तो लोगों की दृष्टि है और जाती है, परंतु त्याग पर दृष्टि बहुत कम रहती है। और जो त्याग का महात्म्य है वो विधि का महात्म्य नहीं है इतना, वो तो एक परमात्मा का चिंतन और संसार में किसी ऊपर अपना समझे, दो बात है। ये इतनी दामी बात है कि दुनिया मात्र का ज्ञान होता, सबका हित होता है और सबका इतनी सबकी सेवा हो जाती है, किसी का भी किंचित मात्र भी बुरा नहीं सोचता है, उसके द्वारा दुनिया की सेवा हो जाती है। अब दुनिया की सेवा में कितना द्रव्य चाहिए, कितनी क्रिया चाहिए, कितना सामान चाहिए, केवल बुरा न सोचने मात्र से दुनिया का हित होता है। मैंने पहले कहते दृष्टि नहीं जाती, इस तरफ ख्याल नहीं जाता है मनुष्य का, पर बात है ऐसी एकदम सीध बात, किसी का बुरा न सोचे। किसी की बुरा न सोचने की कसौटी मैंने बताई कि किसी का भी बुरा नहीं सोचते हम, तब किसी की बुराई से हमारी प्रसन्नता नहीं हो गई, और किसी की बुराई से किसी के मन से प्रसन्नता होती है तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, ये बात नहीं है। उनका बुरा चाहते हैं, बुरा हो जाए हम राजी होते हैं, तो हम बुरा चाहते हैं, तो उस हिंसा में हम सम्मिलित हो गए, उस हत्या में हम भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि उनमें हम राजी हुए। तो कृत कारित अनुमोदित तीन तरह की हिंसा होती है, हिंसा करना और हिंसा करवाना दूसरे से, और अनुमोदन करना ठीक हुआ कि अच्छा हुआ, ऐसा अच्छा हुआ मान ये अनुमोदन है, तो अनुमोदन से भी हिंसा होती है। तो राजी हो जाते हैं किसी की मृत्यु से, जैसे मैंने कहा जिन्ना मर गया तो राजी नहीं होना चाहिए किसी की मौत से। सत्संग होता गोरखपुर में, उसमें समाचार है कि जिन्ना मर गया, तो उसमें बोले बहुत ठीक हुआ, तो श्री जयदास बोले ऐसा कभी राजी नहीं, किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए, कितना ही हमारा बैरी हो, कितना ही दुष्ट हो, उनके मरने से राजी नहीं होना चाहिए। तो क्यों कि मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कि मरने वाले को मरना अच्छा लगता है क्या, तो उसको बुरा लगता है, उसमें हम राजी हो जाए ये पाप की बात है। किसी को बुरा नहीं, किसी की हानि से राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित दादूराम जी बैठे बोल रहे कि महाराज राक्षस मरते थे तो धुंध भी बजाते थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होती थी, राजी होते थे। तो सेठ जी बोले कि वो देवता थे, महात्मा नहीं थे, वो कोई भगवान के भक्त हो, परमात्मत्व की प्राप्ति वाले जीवन मुक्त होगा तो भगवान के प्रेमी होगा, तो सच्चे साधु वो नहीं थे, वो देवता है। देवताओं का दर्जा तो भोगों की दृष्टि से ऊंचा है, उनका हृदय अंतकरण दृष्टि थोड़ा ही ऊंचा है, वे भोग सामग्री ज्यादा है उनकी। तो यहाँ धनी आदमी ऊंचे है तो पैसा उनके पास है, स्वास्थ्य ऊंचे है, वो पैसे से ऊंचा नहीं होता, पैसे से नीचा होता है। हाथ का पैदा किया हुआ सदा कभी साथ नहीं रहने वाला ऐसा धर्म पास हो गया, उससे हम ऊंचे हो गए, ये बिल्कुल गलती बात है। ये तो चौड़े बात है, बाहर पड़ी हुई चीज है, उस हमारे आप हम ऊंचे हो गए। तुम नीचे नहीं, तुम्हारी फजीति होगी, तुम्हारा नीचापन हो गया, क्योंकि तुमने दृढ़ से अपने ऊंचा मान लिया, तो तुमसे ऊंचा दृढ़ हुआ, दृढ़ से तुम ऊंचे कैसे हुए? तुम्हारी इज्जत दृढ़ से है तो दृढ़ ऊंचा हुआ, आप ऊंचे हो, दृढ़ भी हुआ। तो जड़ता की ऊंची से अपने चेतनता को ऊंचा मानना कितनी बड़ी भारी गलत है, तो वो ऊंचापना नहीं है। अपना ऊंचापना है त्याग से, हमारे राग नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, प्रसन्नता नहीं है पदार्थों की, तो हम ऊंचे उठ गए, ऊंचे हो गए। यही तेरे तस्वर को ये शान सामने सतंग माना, उन संसार को जीत गए। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग है, ये बहुत चीज है, त्याग सबसे ऊंचा त्याग। उस त्याग में जो किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न सोचना, किसी की बुराई न देखना, किसी की बुराई चर्चा नहीं करनी, ये अगर नियम रखे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। हमारे संतों की बाड़ी में, महात्माओं के वचनों में ऐसे वचन आए, वो वचन आपको कहता हूँ मैं, मेरी बात घर की नहीं कहता हूँ, परंतु बहुत आदरणीय, इतनी ठोस सच्ची बात हमें मालूम देती, बहुत ठीक किया। देखे तो हंसी जैसी बात है, और चित्रकूट में कोल भीड़ की रात क्या कहते हैं कि महाराज सबसे बड़ी सेवा हमारी ये है कि आपके भाषण है, कपड़ा है, हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा। तो देखे तो तमाशा ही, चोरी नहीं हमारी सेवा हो गई, परंतु वास्तव में सेवा करता है, किसी का भी बुरा कभी नहीं करता, तो सबकी सेवा करता है। एक ऐसी बात छिपी हुई बात है, हर एक आदमी को पता नहीं है, ऐसी बात किसी का भी बुरा नहीं था, सर्वे बहुत हमारे साथ व्यर रखे उसके। उमा संत की ये बधाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद कर्म भी भलाई करते हैं, तो उसे भलाई भलाई उनकी पाती आई हुई है, ये संतों का स्वभाव है। दुष्टों का स्वभाव है बुराई बुराई करना, बैर अकारण सबका हूसों, जो कर हित अनहिता हूसों, वो तो सामान्य पुरुष वाली है, सबसे बैर रखना, अगर कोई हित करे तो उसका तो नुकसान करना ही, ये विशेष होती है। ऐसे संतों का सब जगह हित है, पर बुराई करे उसका भी भला करना विशेष खास है, तो बुराई न करना है ये बहुत ऊंची बात है। सत्य भाषण एक झूठ न बोलना, इन दो में झूठ दो न बोलना है, ये बड़ी चीज है। सत्य बोलने की अपेक्षा मानो निषेध का त्याग है, वो त्याग जितना ऊंचा है उतना विधि त्याग ऊंची नहीं है। हम लोगों की प्राय विधि ऊंची जती हुई है, विधि है वो ऊंची है, बात ठीक है वो भी, परंतु दोनों में तारतम्यता देखी जाए तो निषिद्ध का त्याग है उस अंदर जा ऊंचा, ये बात है। तो ये दो बात, एक तो परमात्मा तत्व को प्राप्त होना, और ये किसी के साथ द्वेष न करना, ये दो बात होने से हमारा जीवन बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। नारायण 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 नारायण, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, कोई शंका उत्पन्न होती है, अर्थन आती हो तो बोलो।